नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका शीर्षक के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए सहयोगात्मक, नवोन्मेषी और सतत रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया है। इस सम्मेलन के दौरान श्री शाह छत्तीसगढ़ के सेल भिलाई इस्पात संयंत्र की CSR पहल के अंतर्गत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत NDDB द्वारा छत्तीसगढ़ मिल्क फेडरेशन के जरिए विटामिन ए और डी से भरपूर दूध की आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहकारिता मंत्री IDBI की CSR पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले लगभग 3,000 बच्चों को पोषण प्रदान करेगा। संजीवनी NDDB द्वारा विकसित एक ऊर्जा से भरपूर अर्ध ठोस रेडी टू ईट पौष्टिक पूरक आहार है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उपस्थित रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPFS के अंतर्गत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसमें पिछले 11 वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति J.K. माहेश्वरी और अतुल एस चंदुलकर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं होने के कारण श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग EPFO के दायरे से बाहर रह गया है। EPFS एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिवक्ता प्रणव सचदेवा और नेहा राठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि प्रतिमाह 15,000 रुपए की वेतन सीमा मनमानी और तर्कहीन है और विशेषज्ञ निकायों तथा संसदीय समितियों की बार बार की सिफारिशों के बावजूद इसका मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
निर्वाचन आयोग राज्य में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। मसौदा मतदाता सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि दावेदारी और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस नोटिस चरण के दौरान 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों पर निर्णय लिए जाएंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान वे अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्ज का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फाती बिरोल से मुलाकात की। इस मुलाकात में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज कुआलालंपुर के स्टेडियम एक्जियाटा एरिना में आयोजित मलेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलेंगी। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ और उन्नति हुड्डा भी नजर आएंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।